ام شانتي. مرلی ہے 14 جنوری 1990 14 جنوری 1990 آج باپ دادا وانی ارتھات بور کی طرف وشیش اٹینشن دلا رہے ہیں کیونکہ بول کا سمبندھ آپ کے ساتھ بھی ہے اور کس کے ساتھ ہے سرو کے ساتھ بھی اور دیکھا کیا منسا دارا یاد میں رہنا اس کے لیے پھر بھی بیچ بیچ میں پروگرام رکھتے ہیں لیکن بول کے لیے البیلاپن زیادہ ہے اس لیے باپ دادا اس پر وشیش انڈر لائن کرا رہے ہیں 2 ورش پہلے 88 میں باپ دادا نے وشیش پرشارت میں سیوا میں آگے بڑھنے والے مہارتھی آتماؤں کو اور سبھی کو 3 باتیں بول کے لیے کہی تھی. کون سی؟ کم بولو، دھیرے بولو، مدھر بولو. ویرتھ بولنے کی نشانی ہے وہ زیادہ بولے گا. मजबूरी से समय प्रमाण संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने लिए बांधा है. व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है और दूसरा समय व्यर्थ जाता है. व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होती है? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका किसके जैसा होगा? कथा माफिक होगा. तो ये मुरली थी 14 जनवरी 1990. शायद ये एकमात्र ऐसी मुरली है जो संपूर्ण मुरली बोल के ऊपर है, केवल बोल के ऊपर. इसके लिए सुशील भाई इसको
फिर पढ़ने
बहुत जरूरी है. संपूर्ण मुरली केवल बोल के ऊपर है. बोल कैसे हो? फिर से पढ़ते हैं. आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं क्योंकि बोल का संबंध आपके साथ भी है और सर्व के साथ भी है और देखा क्या मनसा द्वारा याद में रहना उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं लेकिन बोल के लिए अलविलापन ज्यादा है इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं. 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने के लिए महारथी बच्चों को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी. कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो. व्यर्थ बोलने की निशानी है वो ज्यादा बोलेगा. मजबूरी के समय संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने लिए बांधा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है जैसे किसी ने. व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान क्या करते हैं? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है और दूसरा समय व्यर्थ जाता है. तो व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होती है? मंजू बहन, गफलत करने वालों के बोल कैसे होते हैं? आज की मुरली का प्रश्न है. जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे. ये पुरुषार्थ करने वाले बच्चों के बोल नहीं है आज का मुरली का प्रश्न है ना. छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा माफिक होगा. 14 1990। मुरली में बाबा ने कहा कि दो प्रकार के बच्चे हैं, एक पुरुषार्थी और दूसरे तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट डिवीजन, और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में आने वाले। प्राप्ति, पालना, पढ़ाई और प्राप्ति सबको समान दी गई है, फिर भी अंतर क्यों? इस अंतर के दो कारण, एक तो संकल्प शक्ति का यथार्थ रीति से, जिस रीति से प्रयोग करना चाहिए नहीं कर रहे, और दूसरा है वाणी। बाबा ने ये मुरली में यहां से ये जो पैराग्राफ लिया हुआ है कि कहा कि याद के लिए तो क्या करते हो, प्रोग्राम रखते हो, पर आज विशेष अटेंशन जो दिला रहे हो किसके लिए दिला रहे, बोल के लिए। तो व्यर्थ बोल की परिभाषा यहां बाबा ने दी है। व्यर्थ बोल किसे कहेंगे, व्यर्थ बोल क्या नुकसान करते हैं? तो व्यर्थ बोल से क्या होता है, एक तो फिजिकल एनर्जी, शारीरिक एनर्जी भी नष्ट होती है, वेस्ट होती है, और दूसरा टाइम वेस्ट होता है। ये दो बातें बाबा ने कही है। तो व्यर्थ बोल, फिर इसी मुरली में व्यर्थ बोल की बाबा ने परिभाषा दी है। पांच ऐसी चीजें हैं जिन्हें बाबा व्यर्थ बोल की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, व्यर्थ की श्रेणी में। वो पांच कौन कौन से बोल है जिसको लिए बाबा ने ऑफिशियली इस मुरली, जो पूरी मुरली केवल बोल के ऊपर है, पांच प्रकार के बोल। सबसे पहला हंसी मजाक, लिमिट से बाहर वाला शब्द है बाबा के, हंसी मजाक, वो भी कैसा, लिमिट से जो बाहर है। उसमें दो बातें, एक तो हंसी मजाक अगर करना भी है तो बाबा ने कहा उसमें एक तो रूहानियत होनी चाहिए, और दूसरा किसी ना किसी आत्मा को उससे फायदा होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम, इसी मुरली में कहा है बाबा ने कि इस तरह के जो जिनके बोल है, कोई कहते हैं कि हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, तो बाप दादा पूछते हैं कौन सा स्वभाव, बाप दादा वाला स्वभाव, ये बाप दादा वाला स्वभाव नहीं है, ये साधारण पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वभाव नहीं है ये। इसके लिए सबसे पहले व्यर्थ की श्रेणी में आता है कौन सा, लिमिट से परे, सीमा से परे, अमर्यादित हंसी मजाक। बाबा ने कभी मुरलियों में ये भी कहा है, वह हंसी मजाक जिसमें विकार की वायु हो तो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला हंसी मजाक, दूसरा टॉन्टिंग, टॉन्टिंग वे, टॉन्ट करना, कमेंट करना, तीर चुबाना, व्यंग बाण छोड़ना, किसी की कमजोरी, किसी की गलती, उसको बार बार याद दिलाना, सबको पता है ना वो। किसी को बार बार ये स्मरण दिलाना कि उसने ये गलती की है या की थी। वो एक बार बताया था ना, एक युगल, कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो जो पति होता है वो तो कभी शराब पीता नहीं है, पर एक दिन बहुत शराब पी लेता है, और जब घर आता है तो उसको एकदम से महसूस होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसकी पत्नी उसे बहुत डांटती है इस बात के लिए, ये तुमने क्या कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मतलब वो कभी पीता भी नहीं था, एक दिन ऐसी गलती हो गई उसकी वजह से, तो उसको बहुत सुनाती है, बहुत सुनाती है, फिर बाद में कहती है अच्छा ठीक है, वो बहुत माफी भी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, तो कहती है कि ठीक है माफ, तो ये जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर वो बार बार उसे वही सुनाती रहती है कि तुमने ये गलती की थी, तुमने ये गलती की थी, तुमने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। वो एक दिन इतना परेशान हो जाता है, अरे मैंने कितनी बार तो माफी मांग ली है और तुमने मुझे माफ भी कर दिया था। तो वो कहती है कि मैंने तो माफ कर दिया था, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम ये भूल जाओ कि मैंने माफ किया था, इसके लिए बार 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 तुमको बताती रहती हूँ। तो हमारे बोल ऐसे ना हो कि किसी की कमजोरी का वर्णन करते रहे, याद दिलाते रहे, इस तरह की बोल नहीं हो। तो सबसे पहला था हंसी मजाक, दूसरा था टॉन्टिंग, तीसरा था व्यर्थ की बातें इकट्ठा करना और सुनाना, यहां वहां की बातें। बातें बातें है तो बाप नहीं, द्वापर से रामायण भागवत भी बातें थी, जब बातें थी तो बाप नहीं था, अब भी बातें हैं तो बाप खो जाएगा। तो जहां बातें हैं वहां पर बाप नहीं है। तो बातें इकट्ठा करना और फिर सुनाना। चौथा, सेवा समाचार सुनाते सुनाते सेवाधारियों की, सेवा साथियों की कमजोरी का वर्णन करना और उसमें रस लेना। ये एक जबरदस्त माया है। सेवा समाचार सुनाते सुनाते सेवाधारियों की कमजोरी का वर्णन करना। और पांचवा, अयुक्तियुक्त बोल, जो कि ब्राह्मण बोल नहीं है, जिसके लिए बाबा ने कहा रमणीकता की परिभाषा दी है। रमणीक तो बनना है, पर रमणीकता में और तीन चार बातें होनी चाहिए। रमणीकता भी ऐसी हो कि जिसमें स्थान देखकर, व्यक्ति देखकर, समय देखकर, संगठन देखकर, वातावरण देखकर, इन पांचों में से एक भी बात अगर कम है तो वो व्यर्थ की श्रेणी में आएगा, उसे रमणीकता नहीं कहा जाएगा। व्यर्थ बोल, फिर बाबा ने ये तो कहा इस तरह के जो बोल है इसको बाप दादा कहते हैं, ये व्यर्थ की श्रेणी में। तुम किसकी संतान हो? सदगुरु की। सदगुरु के बोल को क्या कहलाया जाता है? महावाक्य। तो तुम्हारे भी क्या हो? महावाक्य हो। कैसे वाक्य हो? कि आत्माओं को लगे ये कुछ बोले, चात्रक हो सुनने के लिए। भाषण नहीं, दिन भर के बोल की बात चल रही है। सारे दिन भर में जो बोला जाता है, जगदीश भाई ने कभी कहा था ना आर्टिकल में, एक लिखा है उन्होंने एक लेख में, कि ब्राह्मण आत्मा इतना बोलते हैं इतना बोलते हैं, अगर वो सारा ही रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वो जो ओम शांति भवन है वो पूरा भर जाएगा, सीडी से, कैसेट से। तब कैसेट थी, तो जितना बोलते हैं और उसमें से जो महत्वपूर्ण है वो जो साउंड रूम है उतना ही होगा, बाकी पूरा ओम शांति भवन भर जाएगा किन सीडियों से, जो बोला है वो व्यर्थ। बाबा ने भी इसी मुरली में रिजल्ट चेक किया है, रिजल्ट में कहा कि 50% जो है वो ठीक है, परंतु 50% बच्चों का तो ठीक चल रहा है, परंतु बाकी जो है उनका 40% व्यर्थ, 40% जमा हो रहा है और 60% व्यर्थ है। जो भी बोल रहे हैं, जो भी संकल्प कर रहे हैं, सब व्यर्थ की श्रेणी में जा रहा है। उससे भी ज्यादा। ये तो तब भी रिजल्ट देखी बाबा ने। चुप रहना, चुप रहना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु सेवाओं के क्षेत्र में बोलना पड़ेगा। स्पीच सिल्वर है, साइलेंस गोल्ड है, और डायमंड कंट्रोल्ड स्पीच, वो साइलेंस के भी ऊपर है। जितना बोलना, जितना आवश्यक है, युक्तियुक्त जो बोल है, आवश्यक जो बोल है, वो डायमंड स्पीच है। मौन रहना फिर भी बहुत आसान है, कृति से चुप हो जाओ वो तो आसान है। कृति जैसे वो उपवास है ना, एक है भोग विलास और दूसरा है निराहार, पूरा ही भोजन छोड़ दो। वो पूरा भोजन छोड़ना भी बहुत आसान है, पर कब तक? बीच का जो है बैलेंस, जो है जैसे कल जो बात चल रही थी बैलेंस की, वैसे ही एक है बहुत बोलना, एक है बिल्कुल ही बोलना बंद कर देना। बीच का जो है कंट्रोल्ड स्पीच, दैट इज डायमंड। तो बोल कैसे हो? बाबा ने कहा बोल महावाक्य हो, बोल अमूल्य बोल हो, बोल युक्तियुक्त बोल हो, योगयुक्त बोल हो, सामान वाले बोल हो, किसी को गिराने वाले नहीं हो, टॉन्ट करने वाले नहीं हो, कमेंट वाले नहीं हो, उसकी कमी कमजोरियां याद दिलाने वाला ना हो, निरुत्साही बनाने वाले ना हो, हतोत्साहित करने वाले ना हो, उड़ाने वाले हो। जैसे बाबा ने खुद का ही उदाहरण दिया, जैसे बाप दादा के बोल कैसे है, महावाक्य है, रिकॉर्ड करने जैसे हो, ऐसे बोल हो। प्रश्न ये है, बोल का संबंध किससे है? भावनाओं से है, और किससे है? जैसा देखेंगे वैसे बोलेंगे। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, एक हम 10 साल से किसी के साथ में बहुत सभी के साथ अच्छा बोल रहे हो, अचानक 10 साल पहले किसी एक आत्मा के ऊपर हमें क्रोध आया था, उसने हमने उसको कुछ बोल दिया था, अचानक वो सामने आ गई और अचानक हमारे मुख से कुछ ऐसा बोल बोल दिया हमने कि जो नहीं बोलना चाहिए था। ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भावनाओं का परिवर्तन नहीं किया था। बोल का सीधा कनेक्शन भावनाओं से, फीलिंग्स और इमोशन से है। अगर किसी आत्मा के प्रति घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सूक्ष्म में भी आज का स्लोगन भी ऐसा ही कुछ है ना, अंश भी है तो वंश बन जाएगा, वंश रखा हुआ है, उसको परिष्कृत नहीं किया है। परिष्कार एक शब्द है हिंदी में, परिष्कार करना, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, उस भावनाओं का नहीं किया हुआ है तो वो 10 साल के बाद और 20 साल के बाद भी बोल के रूप में प्रकट होगा। इसके लिए हर एक आत्मा के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना, किसी भी आत्मा के प्रति ये ना हो कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, हम इनके पास गए थे इन्होंने मदद नहीं की थी, वो अभी तक याद है, हम बीमार पड़े थे तो ये मिलने नहीं आए थे, अभी इनको भी पड़ने दो बीमार तो हम भी नहीं जाएंगे, याद रखा हुआ है। हम जब टोली लेने गए थे तो थोड़ी सी टोली दी थी, अभी आने दो डिपार्टमेंट में, रखा हुआ है। बदले की सूक्ष्म भावना है, हमने मदद मांगी थी, मदद नहीं मिली थी, हमने कुछ चाहा था उसने नहीं दिया था। हर आत्माओं के प्रति थोड़ा 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 रखा हुआ है। एक एक आत्मा को इमर्ज करो और हिसाब चुकतु करो। कुछ कुछ आत्माओं से बाबा ने हमेशा कहा है कि आत्माओं को इमर्ज करो और उनसे माफी मांगो और माफ कर दो। आत्माओं को इमर्ज करो जिनको हमने दुख दिया है द्वापर से अब तक, मनसा वाचा कर्मणा, कड़वे बोल बोले हैं, दुख दिया है, पीड़ा किसी भी रूप से, उनसे माफी मांगना रोज उन आत्माओं को इमर्ज करके, और किन आत्माओं को क्षमा कर देना, जिन जिन आत्माओं ने हमें दुख दिया है, पीड़ा दी है, सहयोग नहीं दिया है, निंदा की है, ग्लानी की है, अपमान किया है, इंसल्ट की है, उन सभी आत्माओं को माफ कर देना, फॉरगिव्स। कुछ कुछ आत्माएं जिन्होंने हमें बहुत दुख दिया है, हमने उन्हें माफ कर दिया, फिर भी उनके साथ हिसाब किताब चल रहा है, तब क्या किया जाए?
खुद को माफ करना है ना?
तो इसमें क्या किया जा सकता है? शिवानी बहन ने किसी क्लास में कहा है, कुछ अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड अकाउंट होते हैं, अकाउंट अभी तक सेटल नहीं हुए, हमने उसे माफ किया, माफ तो कर दिया परंतु फिर भी हिसाब किताब अभी भी है, कैरी फॉरवर्ड अकाउंट बैंक में होता है, कैरी फॉरवर्ड अकाउंट वो अभी भी चल रहा है। तो जो योग के प्रयोग और तपस्या अंदर जो है, माफ करना और माफी मांगना, ये दोनों ही काम रोज अमृत वेले चलते रहे सुबह शाम, ताकि किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन में थोड़ी सी भी ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी प्रकार की नफरत, घृणा, बदले की भावना ना हो। तो बोल का सीधा संबंध किससे है? भावनाओं से। भावनाओं का परिष्कार, परिष्कृत करना है भावनाओं को, शुद्धिकरण करना है उनको, एक एक भाव, एक एक भावना शुद्ध हो। ताकि बोल भी हमारे वैसे ही शुद्ध हो जाए। तो बीज जो है वो संकल्प है, भावनाएं हैं, इनके ऊपर ध्यान रखना है कि किस प्रकार की भावना हमारी उस आत्मा के प्रति है। हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आई थी, वो कहती थी कि यहां दर्द होता है। कब दर्द होता है? जब एक पर्टिकुलर आत्मा सामने आती है तब। जैसे ही वो सामने आती है यहां पर दर्द चालू होता है, उसकी अब दवाई दो। बाकी समय दर्द होता है? बाकी समय नहीं होता है। जब वो सामने आती है बस तभी यहां पर दर्द होना चालू होता है। कब तक? जब तक सामने है तब तक। शायद कुछ भावना है उसके प्रति अभी भी परिष्कृत नहीं की हुई है। भावनाओं का उदात्तीकरण, भावनाओं का पवित्रीकरण, भावनाओं का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस लीड्स टू प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड स्पीच। तो शुद्ध भावना है। और हमारे बोल कैसे हो? मीठे, कम, मधुर, नपे तुले, युक्तियुक्त, वरदानी, सुखदाई, सारयुक्त, दुआएं देने वाले, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, प्राप्ति कराने वाले, खुशी दिलाने वाले, हिम्मत दिलाने वाले, साहस दिलाने वाले, दुख हरने वाले, ज्ञान युक्त, आवश्यक अनावश्यक बोलना हो, युक्ति युक्त, योग युक्त, राज युक्त और रूहानियत से भरपूर और रॉयल्टी वाले, बलशाली, शक्तिशाली, प्रभावशाली, आगे बढ़ाने वाले, पीछे से लिमिटेड, बाबा ने कहा है बहुत बार इस बारे में, कम हो, कथा माफिक ना हो। जैसे शास्त्रवादियों के बोल, शास्त्र एक बार चालू हो गया कि चालू हो जाता है, वो रुकते नहीं है। फिर वाद विवाद, शास्त्र वादी भयम जो कहा हुआ है ना, इतने शास्त्र पढ़े हैं कि वाद विवाद का भय रहता है। तो वो वाद विवाद चालू हो गया कि उसका कोई अंत नहीं है। तो लिमिटेड। और कमल भाई, सोच कर समझ कर कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कई सेंटरों पे इस तरह का है ना, सिकिला देवो, मुरली एंड होती है, उसके बाद में ये बोला जाता है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इस तरह से। और भी रह गए, आत्मिक, आत्मा समझ, आत्मा को बोल रहे इस भाव के हो, आत्मिक भाव हो वहां, और रिगार्ड हो जिसमें, सम्मान हो जिसमें। संडे की मुरली का वरदान, कल की मुरली में भी था, कोई कोई छोटा होशियार होता तो बड़े भी उसे रिगार्ड देते हैं क्योंकि गैलप कर रहा है। संडे में वरदान, छोटे संसार में कहा जाता है छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड, पर बाप दादा क्या कहते हैं? सबको रिगार्ड दो क्योंकि सबको अपने से बड़ा समझो, मुझसे सब अच्छे। हमको बचपन में एक स्टोरी थी, मुझे याद नहीं, पर उसका टाइटल था मुझसे सब अच्छे। वो जो लेखक उसमें जिस से मिलता है, गाय से मिलता है, फिर वो गाय से बात करता है तो उसको लगता है ये गाय मेरे से भी अच्छी है, फिर ऊंट से बात करता है, वो ऊंट भी मेरे से अच्छा है। संवाद दिखाया है बहुत सारे ऐसे प्राणियों के साथ, वो कहता है इस दुनिया में सभी मुझसे अच्छे हैं अंत में। तो सम्मान देने वाले और रिकॉर्ड और बोल, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित किए होकर बोले जाने वाले बोल, और प्रेरणादायी, उमंग उत्साह, स्फूर्तिदायी, और ये समझ के बोलना है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। वो तो बाबा ने बोला ही है, बाप दादा के पास सारी रिकॉर्डिंग चालू रहती है, यहाँ के साधन और वहां के साधन। कल जो मुरली पड़ी थी ना उसमें भी एक ये बात थी, आपके जो साधन है सूल साधन है, बाबा के पास सूक्ष्म साधन है, इसके लिए वहां एकदम परफेक्ट है। यहाँ आपके जो साधन है वो कुछ समय चलेगा, उसकी संभाल भी करनी पड़ती है, खराब भी हो जाते। बाप दादा के जो साधन है वो प्रकृति से परे है, इसके लिए खराब नहीं होते कभी, और बहुत ही फाइन उसमें रिकॉर्डिंग होती है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते इसमें, इस रिकॉर्डिंग में कभी कभी मिस हो जाएगा। वहां पे एक एक बोल, एक एक भावना, एक एक भाव भंगिमा, सब कुछ उसमें, जेस्चर, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है, क्योंकि वहां ऑडियो नहीं है, वो ऑडियो और वीडियो दोनों है उधर, सब कुछ रिकॉर्डिंग चालू है, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग। आप अगर बोल नहीं सकते, हमेशा ये समझो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो डायमंड हॉल का जो स्क्रीन है ना, वहां पे सब कुछ दिख रहा है, मेरा एक एक संकल्प, और 20,000 की सभा बैठी है, और हम कह रहे हैं हम महान योगी है सबके सामने, और सब लोग वहां देख रहे हैं, अच्छा ये है योगी। तो हमेशा ये सोचो वो जो स्क्रीन है वहां पे सब कुछ दिख रहा है, एक एक संकल्प, एक एक भाव, एक एक भावनाएं, एकांत में बैठ के हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ वहां दिख रहा है, और सारी दुनिया दिख रही है, उसमें भी ब्राह्मण परिवार। तो ये अभ्यास है। फिर उसके बाद में बोल कैसे ना हो, ये जो 5 चीजें बताई, इसके अलावा किसी को दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, पीड़ा पहुंचाने वाले, एकदम डिप्रेशन, सीधा ऐसा तीर चलाया कि आगे वाला सीधा डिप्रेशन में ही चले गया, अभी निकलने का नाम ही नहीं है। डिस्टर्ब करने वाले, गिराने वाले, हिम्मतहीन बनाने वाले, और दिल शिकस्त करने वाले, कांटा जैसे चुभने वाले, ऐसा तीर लगाया कि खून बह ही रहा है, अब तक रुका नहीं है, अनहीलिंग वुंड। बोला और झगड़ा चालू, शक पैदा करने वाले, अच्छा, और अनुमान वाले, टांट, वो टांट तो बोल दिया, और कमेंट्स करना किसी पर, हर चीज को जज करना, जजमेंटल ना हो, जज नॉट एनी शैल नॉट बी जज्ड, बाइबल में लिखा है तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, डोंट जज, वो बैठा हुआ है जज करने के लिए, जज नॉट एनी शैल नॉट बी, अगर खुद जज नहीं करोगे तो तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा, इसके लिए दूसरों को जज करना वो राइट है या रॉन्ग है, उसने जो किया वो सही है या गलत है, ये छोड़ दो, वो उसके ऊपर है। और जजमेंटल बोलना हो, आर्गुमेंटेटिव बोलना हो, नॉन आर्गुमेंटेटिव बोलो, और ईर्ष्या वाला ना हो, द्वेष वाला ना हो, मत्सर वाले ना हो, अहंकार वाले बोलना हो, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब यहाँ पर ब्राह्मण परिवार में एक परंपरा है समाचार सुनाने की, कोई भी कहां पर मधुबन से जो भी मिलने आते हैं, सेंटर ऊपर जाते ही वहां संदली पर बिठाया जाता है कि अभी सुनाओ मधुबन में क्या अनुभव किया, बाबा से मिलने गए कि तुरंत, कई लोग तो 3-4 दिन जाते ही नहीं बाद में सेंटर में, ताकि अनुभव ना सुनाना पड़े डर के मारे। ये देखा गया है, मधुबन में जाने के बाद 2-3 दिन सेंटर ही नहीं जाना, तब तक माहौल शांत हो जाता है, तो बहन जी भी भूल जाती है, तो फिर उसके बाद में नॉर्मल रूटीन चालू होता है कोई लोग मधुबन से भी यहां से उधर जाते हैं तो सेंटर जाते ही नहीं है डर के मारे, कहीं हाथ में माइक ना दे दे बहन जी कि सुना हुआ अनुभव। तो बोल में अहंकार, बोल में मैंपन, जैसे किसी को कहा कि भाई बताओ सेवा समाचार, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैं इधर गया, मैंने उधर गया, मैंने ऐसा किया, ये सब मैं। पर ब्राह्मणों की भाषा वैसे अलौकिक है, हमेशा कहते हैं बाबा ने कराया, परंतु कुछ परसेंटेज है जिनके बोल इस तरह के होते हैं, हमने ऐसा भी किया, हमने वैसा भी है, वो सुनकर दूसरों को लगता है अरे डिप्रेशन में चले जाते हैं वो सुनकर ही, हम तो गए नहीं इधर कहीं, गए बड़ी जगह सेवा करके आए, तो ऐसा सुनाते हैं कि वैसे एक एक गली का, एक एक गली, एक एक पर्दा, और जो जो कुछ देखा एक एक जगह, वो सबका सुनाते हैं, हमने ऐसे भाषण दिया और हमने वैसे भाषण, हमने याऊं किया, हमने त्याऊं किया, इधर मिले हम उसको मिले, वो पूरा कथा माफिक। हाँ, मैंने ज्ञान सुना है, तो ये इस तरह के सारे बोल होते हैं। तो वो जो है ना, वो मैं जो सेवा का समाचार, मैं का समाचार ना हो कि केवल सेवा का समाचार हो, उसमें लिए, उसके लिए हम कल रात में भी यही चर्चा करते थे कि उसमें एक चीज की जा सकती है, मैं ना बोल के हम कहे, हमने ये सेवा की, फिर बाबा ने ये सेवा कराई, हम यहाँ गए तो उस तरह की सेवा हुई, जैसे हम लोग मेडिकल में भी हम लोगों को इसी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, जब किसी सीनियर को इन्फॉर्म करना होता है कि रात में बहुत सीरियस पेशेंट आया, फिर उसको ऐसा किया, फिर वैसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, ये किया, वेंटिलेटर पे डाला, और सुबह अभी सुनाना है कंसल्टेंट सीनियर को, तो हम इस तरह से सुनाते हैं कि रात में ऐसा पेशेंट आया, फिर उसको इस तरह किया गया, उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। दूसरी मेथड है रात में एक पेशेंट आया, फिर मैंने उसको देखा, फिर मैंने सोचा ये है, फिर मैंने उसको इस पे डाला, फिर मैंने उसको ये चालू किया, फिर मैंने उसको ऐसा इंजेक्शन दिया, अभी वो ये है, फिर उसका बीपी कम हुआ तो फिर मैंने ये चालू किया। एक इस तरह के बोल होते हैं, मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने, कईयों को ये जैसे आदत ही है। और दूसरी जो है कि पेशेंट आया, फिर ये हुआ, वो किया गया, वो किया गया, इसमें अंतर है। या फिर हमने ऐसा किया उसके साथ, यहाँ आया तो फिर हमने ये किया, अभी ऐसा है, ये इस तरह है। वैसे इस सेवा में भी मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, बाबा ने ये कराया, बाबा ने ये कराया, बाबा ने ये कराया, इसमें अंतर है दोनों में। बाबा ने कराया, यहाँ वहां पर बाबा का घर था, वहां इस तरह का प्रोग्राम रखा गया था, फिर वहां पर इस तरह की चर्चा हुई थी। एक है मैंने ऐसी चर्चा की थी, फिर वहां इतने लोग थे और मैंने इतने इतने लोगों को इतना भाषण कराया, फिर मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहां पे ऐसा हुआ। ये सूक्ष्म अंतर है बोल का, तो इसमें भी अंतर पड़ जाता है। तो हमारे बोल और एक चीज रह गई, कैसे हो मैं, समान युक्त बोल हो। जो समान के बोल है वो सर्वश्रेष्ठ बोल है, समान युक्त बोल। ब्राह्मणों के बोल समान युक्त होने चाहिए। तो अभी चलते हैं तपस्या की ओर। आज की कमेंट्री नंबर कितना है? चौथी, चार।